दानियल अध्याय 12। हर्मगिदोन के इस बड़े युद्ध के दौरान प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। दानियल अध्याय 12 पद 1। उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वो उठेगा। तब ऐसे संकट महाक्लेश का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। अतः एक बड़े कष्ट या क्लेश का समय आने वाला है, परंतु दानियल के लोग छुड़ा लिए जाएंगे। अब ये छुटकारा कई तरह से आएगा। पहला, वे 144,000 होंगे जो परमेश्वर के द्वारा चिन्हित किए गए हैं और इस बड़े महाक्लेश की महामारी से सुरक्षित किए गए हैं। दूसरा, वे लोग होंगे जो पत्थरों के शहर पेत्रा को भाग जाएंगे, जहां परमेश्वर उन्हें सुरक्षित रखेगा। यीशु अपने शिष्यों को चेतावनी दे रहा था कि जब तुम ये उजड़ने वाली घृणित वस्तु, जिसके बारे में दानियल भविष्यद्वक्ता ने कहा था, पवित्र स्थान पर खड़ी देखो, जब तुम मसीह विरोधी के मंदिर में खड़ा या ये कहता देखो कि वो ईश्वर है, तब जंगल को भाग जाना और अपने कपड़े लेने को भी मत रुकना। जितना तेज जितना जल्दी भाग सकते हो तो यहां से भाग जाना। अगर तुम खेत में हो तो घर भी मत जाना, भाग जाना। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हमें बताया गया है कि परमेश्वर ने उन्हें उकाब की नाई पंख दिए, हेलीकॉप्टर जैसा लगता है, जो उन्हें इस जंगल के स्थान पर ले जाएंगे जहां परमेश्वर उन्हें 3.5 साल तक सुरक्षित रखेगा। यशया की पुस्तक के 16वें अध्याय में परमेश्वर जॉर्डन से कहता है, खोलो और मेरे लोगों को ग्रहण करो, जब तक महाक्लेश समाप्त नहीं हो जाता उन्हें पेत्रा में सुरक्षित रखो। और इसलिए जब मसीही विरोधी को ये पता चलेगा कि यहूदी भाग रहे हैं, तो वह उनके पीछे एक सेना भेजेगा, परंतु पृथ्वी उस सेना को निगल जाएगी। तभी वो चीन और रूस के आक्रमण के मामले में उलझे होने के कारण उनका पीछा और अधिक नहीं कर पाएगा, परंतु वे 3.5 साल तक सुरक्षित रखे जाएंगे। इसलिए तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। अब वे जो नहीं भागेंगे, उस भूमि पर बचे हुओं के विरुद्ध मसीही विरोधी एक युद्ध छेड़ेगा और वहां एक भयंकर नरसंहार होगा। एक बार फिर एक ऐसा क्लेश का समय जैसा उस राष्ट्र के बनने से लेकर उस समय तक कभी ना हुआ। यीशु ने कहा, महाक्लेश का समय जिसे दुनिया में ना पहले कभी देखा था ना फिर देखेगी। अब दानियल यहां पुनरुत्थान का उल्लेख करता है। दानियल अध्याय 12 पद 2। और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। वहां मरे हुओं का पुनरुत्थान है। अब ये सब एक ही समय में नहीं होगा। धर्मी मृतक अधर्मी मृतकों से 1,000 साल पहले उठेंगे, लेकिन यहां सोए हुओं का एक साथ ढेर लगा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम दोनों के बीच में समय का अंतर देखते हैं। धर्मी मृतकों का पुनरुत्थान, वे जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए। जी हां, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के समय वहां एक बड़ा पुनरुत्थान हुआ था। यीशु के मृतकों में से जीवित हो उठने के बाद बहुत से संतों की कब्रें खुल गई थी। बहुत सी पुनरुत्थान देह यरूशलेम की सड़कों पर घूमते हुए देखी गई। अधर्मियों का बड़ा पुनरुत्थान मसीह के राज्य के 1000 साल के बाद होगा, जब वे परमेश्वर के महान या बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए आएंगे और अनंत काल की लज्जा और अपमान के लिए उठेंगे। दानियल अध्याय 12:3। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। वे जो सिखाने वाले हैं वे आकाश की चमक की तरह चमकेंगे, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं हमेशा के लिए तारों के समान प्रकाशमान होंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जीवन स्काई रॉकेट या पटाखे की तरह है। वे एक तेज रोशनी करते हैं, परंतु वे बहुत तेजी से जलकर खत्म हो जाते हैं। वे दृश्य में तेजी से आते हैं और लोग कहते हैं ओह आ, लेकिन वे उसी गति से गायब हो जाते हैं। मनुष्य की महिमा अस्थाई होती है। हो सकता है कि लोगों की भीड़ आज आपका जय जयकार कर रही हो, कल वही आपकी हंसी उड़ाएंगी। मनुष्य की महिमा अस्थिर है, एक बड़ी वाह वाह लेकिन फिर सब समाप्त। परंतु चमकने का वास्तविक स्थान है परमेश्वर का राज्य। मैं हमारे देश में आयोजित बड़ी आतिशबाजी की प्रदर्शनी देखना चाहता हूं, और मैं उन सुंदर पटाखों को देखकर कहूंगा ओह आ, और आपकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। आप तारों को भी नहीं देख पाते हैं, परंतु जब सब समाप्त हो जाता है तब तारे हमेशा की तरह चमकते हुए प्रकाशमान रहते हैं। हो सकता है कुछ में इतनी चमक नहीं हो, परंतु वे सदा के लिए यूं ही टिमटिमाते रहते हैं। कुछ लोग एक बड़ी चमक के साथ आते हैं और उनका अंत भी ऐसा ही होता है। वे जो सिखाने वाले हैं उनकी चमक आकाश मंडल सी होगी। वे सदा चमकते रहेंगे कम या अधिक, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सदा तारे के समान प्रकाशमान होंगे। आप कैसे चमकना चाहते हैं? दानियल अध्याय 12:4। परंतु हे दानियल, तू इस पुस्तक पर मोहर करके इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख। उसे इस पुस्तक पर मोहर लगाकर अंत समय तक बंद कर देनी थी। दूसरे शब्दों में दानियल, तुम इसे मत समझो, ये अंत के समय में समझी जाएगी। दानियल अध्याय 12:4 में आगे लिखा है, बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ डांट करेंगे और इसे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, ज्ञान बढ़ जाएगा। इसके तात्कालिक संदर्भ में ये दानियल की पुस्तक की भविष्यवाणी के ज्ञान के बारे में है, और सच में परमेश्वर ने दानियल की पुस्तक के भेदों का इन अंतिम दिनों में अनावरण किया है। इसे आज हम पिछली घटनाओं के प्रकाशन में वर्तमान और भविष्य के संबंध में समझ सकते हैं। इसलिए दानियल की पुस्तक अब कोई मोहरबंद पुस्तक नहीं रह गई, परंतु एक खुली किताब है। परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला इस पुस्तक के अर्थ को सरलता से समझ सकता है, क्योंकि ज्ञान बढ़ गया है। यहां ज्ञान का बढ़ना इंसान के सामान्य ज्ञान के संदर्भ में है। हमारी पीढ़ी में सचमुच में ऐसा ही हुआ है। 1950 और 1960 के दशक के बीच इंसान का ज्ञान दोगुना हो गया है। दूसरे शब्दों में हर बात जो मनुष्य ने आदम से लेकर 1950 तक सीखी थी उसकी तुलना में मनुष्य का ज्ञान अगले दशक में उसका दो गुना हो गया था। मनुष्य ने जो 1950 तक सीखा था उससे दो गुना ज्यादा मनुष्य ने 1960 या 1970 में सीखा। अब माइक्रो डाटा प्रणाली और कंप्यूटर आ जाने से हम फिर से इस पीढ़ी में अपने संचित ज्ञान को दो गुना करने में सक्षम हो गए हैं। ज्ञान बहुत बढ़ गया है। रुचिकर है लोगों के आवागमन की गति। कल सुबह मैं जेट में चढ़ूंगा और दोपहर का खाना स्पोकेन में खाऊंगा। आप जानते हैं कि आज आप जेट यात्रा द्वारा जो कुछ कर सकते हैं वो कितना आश्चर्यजनक है। लोग भागे जा रहे हैं। दानियल अध्याय 12 पद 5 और 6। ये सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तीर पर और दूसरा नदी के उस तीर पर। तब तो पुरुष सन वस्त्र पहने हुए। आप देखिए इस सन का वस्त्र पहने पुरुष के साथ वहां दूसरे श्रेष्ठ पुरुष भी थे। इसलिए मैं ये विश्वास करता हूं कि जो सन का वस्त्र पहने हुए था वो प्रभु यीशु मसीह था और उसके साथ जो दूसरे थे वे स्वर्गदूत थे। दानियल अध्याय 12 पद 6 में आगे लिखा है, जो पुरुष सन वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? इन बातों के अंत होने में कितना समय है? महाक्लेश आदि। दानियल अध्याय 12 पद 7 से लेकर 9 तक। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते दहना और बाया अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, ये दशा 3.5 काल तक ही रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ न समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और उन पर मोहर दी गई है। इसलिए दानियल, तुम इसके बारे में परेशान मत हो या चिंता मत करो। ये वचन अंत के समय तक के लिए बंद करके मोहर कर दी गया है, अर्थात जब तक परमेश्वर उसे समझने के लिए ना खोले तब तक के लिए। दानियल अध्याय 12 पद 10। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। दानियल ने उस दिन की भविष्यवाणी की जब मसीहा आएगा। यरूशलेम को पुनः बसाए जाने की आज्ञा देने के दिन से 1,73,880 दिन, अतः उसने उस विशेष दिन की भविष्यवाणी की जब यीशु फिर से आएगा, उस दिन की नहीं जब परमेश्वर अपनी कलीसिया या चर्च को लेने आएगा। कोई मनुष्य उस दिन या उस घड़ी को नहीं जानता। हम नहीं जानते कि परमेश्वर कब हमारे लिए अर्थात अपनी कलीसिया के लिए आएगा। दानियल अध्याय 12 पद 11। और जब से नित्य होम बलि और प्रार्थनाएं उठाई जाएंगी मसीह विरोधी के द्वारा अंतिम 7 साल के चक्र के मध्य में, पद 11 में आगे लिखा है, तब से 1290 दिन बीतेंगे। परमेश्वर की गवाही के अनुसार अगर आप उस समय तक इस धरती पर है तो आप अपने कैलेंडर पर निशान लगा सकते हैं और दिनों को गिन सकते हैं। आप ऐसा करना चाहेंगे क्योंकि वो एक भयंकर जलता हुआ समय होगा जब परमेश्वर का क्रोध दंड रूप में इस धरती पर उंडेला जाएगा। इस जगह आपको ये जानने के लिए कि उस 3.5 साल के दौरान क्या होने वाला है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6-18 तक पढ़ना चाहिए। दानियल अध्याय 12:12। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे, या मसीह के आने के बाद से 45 दिनों तक। मत्ती अध्याय 25:31 में जब यीशु वापस आएगा वो सारी जातियों को न्याय के लिए इकट्ठा करेगा, और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है वैसे ही वह भी उन्हें अलग अलग करेगा, और जो उसकी दैनी ओर होंगे वे उनसे कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। बहुत सारे लोग उस महाक्लेश के दिनों में जीवित रहेंगे। अब यदि वे उस महाक्लेश के दिनों में बचे रहेंगे और उन्होंने मसीही विरोधी की उपासना ना की और ना ही अपने ऊपर उसकी छाप ली, ना उसकी मूर्ति की उपासना की, क्योंकि यदि किसी मनुष्य ने मसीह विरोधी की उपासना की या उस मसीह विरोधी की छाप अपने ऊपर ली हो या उस मूर्ति की उपासना की, तो उसे उद्धार का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में यूहन्ना ने आकाश के मध्य में एक स्वर्ग दूत को उड़ते और ये कहते देखा था कि दुर्भाग्य 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 पृथ्वी के बचे हुओं का, यदि कोई मनुष्य उस छाप को लेगा या उस पशु या मूर्ति की उपासना करेगा तो वो उस आग की धधकती हुई भट्टी में डाला जाएगा और उसके उद्धार की कोई आशा नहीं है। स्वर्गदूत लोगों को उस छाप को ना लेने के लिए सतर्क कर रहा है। हाँ, दूसरी ओर अगर आप उस छाप को लेने से इनकार करेंगे तो इनकार के फल स्वरूप वो आपको मृत्यु दंड दे सकता है। अतः आपको जाकर इस मैकीवर और उसके संगियों के साथ मिल जाना होगा और इन 3.5 साल के लिए अपने साथ खाना, कपड़े, बंदूक और बाकी की जरूरतों के सामान के साथ ओरेगॉन के जंगलों के बीच अपने छिपने का स्थान बनाना होगा, ताकि आप इन 3.5 साल तक बच सकें और न्याय के 45 दिन सुरक्षित बिता सकें, क्योंकि उस महाक्लेश में से गुजर जाना परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए काफी नहीं है। तब आपको उस न्याय में भी होना है जो मसीह कहेगा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, हे प्रभु हमने कब आपको ऐसा देखा। आप जानते हैं, कोई आपके पास आकर आपका खाना लेने की कोशिश करें तो अच्छा होगा कि आप अपनी बंदूक अलग रख दें। अगर आपको 45 दिन बचे रहना है, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया, और उन्हें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मिल जाएगी। अतः वे कम होंगे जो उस बड़े क्लेश से गुजरने के बाद परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। ज्यादातर वे जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वे होंगे जो परमेश्वर के हैं और जो यीशु के साथ लौटेंगे। तब वो अपने 10,000 पवित्र जनों के साथ इस पृथ्वी का न्याय करने आएगा और हम उसके साथ 1,000 वर्ष के लिए रहेंगे और राज्य करेंगे। परंतु दानियल को, दानियल अध्याय 12 पद 13, अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। दानियल, तू अपने साथियों के साथ अंत के दिनों में खड़ा होगा, परंतु तब तक जाकर आराम कर। अतः दानियल की मोह लेने वाली भविष्यवाणियां परमेश्वर का अद्भुत मनुष्य मेरे मिलने वालों की सूची में सबसे ऊपर है जिनसे मैं स्वर्ग में मिलना चाहता हूं। परमेश्वर के इस मनुष्य का मैं बहुत आदर करता हूं और सराहता भी हूं कि मैं कामना करता हूं कि समय मिलने की बैठकर उसके जीवन, प्रेम और संबंधों से सराहूं और सीखूं। स्वर्ग में ये एक विशेष बात होगी कि इतिहास से परमेश्वर के महान लोगों से परिचित होने और उन्हें जानने का समय होगा। पत्रस ने कहा कि भौतिक संसार जल्दी ही समाप्त हो जाएगा और सारे काम जला दिए जाएंगे, मूल तत्व तेज गर्मी से पिघल जाएंगे। उसने एक बहुत ही उपयुक्त प्रश्न पूछा था, दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 11, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? अगर आप एक भौतिक स्वभाव के व्यक्ति हैं और आप इन भौतिक वस्तुओं को ही महत्व देते हैं तो जान ले कि भौतिक संसार की सारी वस्तुएं और उनकी आशा नाशमान है। इसलिए भौतिकवादी या मानवतावादी होना बुद्धिमानी नहीं है। हमें किस प्रकार का मनुष्य होना चाहिए? पत्रस उत्तर देता है, सारी पवित्रता में, धार्मिकता में, परमेश्वर की समानता में जीना। हमें धर्मी जन होना चाहिए। हमें अपना धन स्वर्ग में एकत्रित करना चाहिए। हमारी आंखें स्वर्ग की वस्तुओं पर होनी चाहिए, ना कि पृथ्वी की वस्तुओं पर। हमें अपना हृदय सनातन बातों में लगाना चाहिए, ना कि संसारिक बातों में लगाना चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं सच्चे धन को खोजने में होनी चाहिए, क्योंकि जहां किसी मनुष्य का धन होता है वहां उसका मन भी होता है। अतः परमेश्वर हमें स्वर्गीय वस्तुओं को इकट्ठा करने में और उन्हें यथोचित महत्व देने में हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमें अपने हृदयों को जांचने में, स्वयं को जांचने में, हमारे जीवन एवं हमारे जीने के ढंग को जांचने में सहायता करे और हम अपने प्रभु का महिमा में वापस आने और राज्य स्थापित करने की प्रतीक्षा में जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको आशीष दे, उसका हाथ आपके जीवन पर हमेशा बना रहे, वो आपको अपने प्यार और अपनी आत्मा से भर दे और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने उद्देश्य के अनुसार हमारी अगुवाई करें।